मैं कहती हूँ कि साकेत से इसकी शादी कर देते हैं। सुल्ताना बेगम की आवाज़ आई। नूर एक पल के लिए ठिठक गई। अच्छा लड़का है, सुल्ताना बेगम आगे कह रही थी। इन सब बातों से निकलने का यही एक रास्ता है। वो परेशान थी और उन्हें यही एक हल नज़र आ रहा था। नूर ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। उसके अब्बा ने उसे देखा। आओ बेटा। उसने चाय रखी और जाकर बेड पर अपने अब्बा के सामने बैठ गई, जबकि उसकी अम्मी सोफे पर बैठी थीं। इकबाल ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराए। वक्त और हालात चाहे कितने भी बुरे हों, मैं तुम्हें कभी समझौता करने को नहीं कहूँगा, उन्होंने कहा। सुल्ताना बेगम तुरंत बोली, जी आप अपनी बेटी को क्या समझा रहे हैं, मैं तो उसके निकाह की बात कर रही हूँ। उनकी बातों में फ़िक्र थी, मगर तरीका अलग था। इकबाल ने फिर नूर की तरफ देखा। तुम मेरी बेटी हो, मेरा गुमान हो, मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुल्ताना बेगम ने कहा। नूर ने उनकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोली। मैं इसे बोझ नहीं समझती, सुल्ताना बेगम ने खुद ही कहा। मैं इसकी हिफाजत के लिए कह रही हूँ, अगर इसका निकाह हो जाएगा तो उस शैतान की नज़र इस पर नहीं जाएगी। उनकी आंखों में सचमुच डर था अपनी बेटी के लिए, मगर फ़र्क था इकबाल और सुल्ताना बेगम के सोच में। सुल्ताना, इकबाल ने धीमे से कहा, जैसे उन्हें रोकना चाहते हों, मगर उससे पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नूर की आवाज़ आई। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। अगर इस सब का यही सल्यूशन है, नूर ने कहा, तो मैं साकीत के साथ निकाह करने को तैयार हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, मगर उसके अंदर क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक निकाह का नहीं था, बल्कि नूर की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अगर आपको लगता है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ। नूर की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी मजबूरी छुपी थी। इकबाल ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। बेटा, किसी एक से पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे के पीछे नहीं छुपते। बस इतना सुनते ही नूर की आंखों से आंसू बह निकले। गलती तो मुझसे भी हुई है अब्बा, उसने रोते हुए कहा, जैसे हर शब्द उसके दिल को चीर रहा हो। उसे सच में अपनी हर बात का पछतावा था। इकबाल हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में दर्द छुपा था। तो क्या सजा के तौर पर तुम्हारी शादी करवा दूं? वो ऐसा बाप नहीं था। उसकी बेटी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत थी, उसकी पूरी दुनिया। मेरी वजह से उसने आप पर हाथ उठाया, आपको मारा, नूर की आवाज़ सिसकियों में टूट रही थी। इकबाल ने गहरी सांस ली। उसने मुझ पर हाथ उठाया, इसका दुख नहीं है मुझे। दुख इस बात का है कि मेरी बेटी आज यूं सिर झुकाकर खड़ी है। नूर अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं क्या करूं अब्बा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इकबाल ने आगे बढ़कर उसका चेहरा ऊपर किया। सर उठाओ नूर, और इतना उठाओ कि कोई तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत ना करे। ऐसी बनो कि लोग तुम्हें झुकाने की कोशिश भी ना करें, बल्कि खुद तुम्हारे सामने सिर झुका दें। तभी पीछे से सुल्ताना बेगम की ठंडी आवाज़ आई। लड़की अपने खूंटे से बंधी ही अच्छी लगती है, कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। उनकी बात साफ थी, नूर का निकाह ही हल है। औरत को अगर किसी मर्द का सहारा मिल जाए तो दुनिया की नज़रें खुद बखुद झुक जाती हैं। इकबाल का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। क्यों, हमारी बेटी क्या अबाहिज है जो उसे किसी सहारे की ज़रूरत पड़े? नूर ने अपने अब्बा को देखा, उसकी आंखों में हैरानी भी थी और सुकून भी। उसे एहसास हुआ, उसका सहारा कोई मर्द नहीं, उसका सहारा उसका अब्बा है, और वो आज भी उसके साथ खड़ा है पहले की तरह। हमारी बेटी, हमारी बेटी कोई अपाहिज है क्या जो किसी का सहारा ढूंढे? इकबाल की आवाज़ अब सख्त हो चुकी थी। इसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी। नूर ने अपने अब्बा को देखा, उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह सुकून उतरने लगा था। उनकी बातों ने जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। सुल्ताना बेगम ने फिर सवाल किया, आप इसे अब भी पढ़ने के लिए वहीं भेजेंगे? इकबाल ने बिना देर किए जवाब दिया, क्यों, अब तक क्या हुआ है, वो वहीं पढ़ती थी, हमारे पास रहकर भी तो पढ़ सकती है, उन्होंने नूर की तरफ देखा जैसे उसे यकीन दिला रहे हों, यहीं से अपनी अगली पढ़ाई शुरू करेगी। नूर चुप थी, मगर अब उसकी खामोशी में डर नहीं सोच थी। इकबाल आगे बोले, तुम पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो, फिर बीएड कर लेना, तुम्हें एक अच्छी टीचर की नौकरी मिल जाएगी। वो हल्का सा मुस्कुराए, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूँ, मगर मेरी बेटी एक अच्छी नौकरी करेगी। उनकी आंखों में सपने थे, ऐसे सपने जो वो अपनी बेटी के लिए जी रहे थे। उन्हें दुनिया की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस इतना चाहिए था कि उनकी बेटी झुके नहीं, रुके नहीं, वो उसे किसी के सहारे नहीं बल्कि पंख देना चाहते थे, ताकि वो खुद अपनी उड़ान तय करे और वो हर हाल में उस उड़ान को देख सके। नूर की आंखें फिर भर आईं, मगर इस बार आंसू दर्द के नहीं, हौसले के थे। आप इसकी शादी भी नहीं करेंगे और उन लोगों से लड़ाई भी नहीं करेंगे? सुल्ताना बेगम की आवाज़ में अब साफ नाराज़गी थी। उनका इशारा फरीद खान की फैमिली की तरफ था। तो ठीक है, मैं खुद ही बात करती हूँ उनसे, उन्होंने गुस्से में कहा और फोन उठाते हुए आगे बढ़ी। अभी फोन करके दो बातें सुनाती हूँ उन्हें। वो तेज कदमों से कमरे से बाहर जाने लगी। नूर घबराकर उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन इकबाल ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। जाने दो, उन्होंने धीमे से कहा, तुम्हारी अम्मी को जो करना है करने दो, हम उसे इग्नोर करेंगे। नूर ने हैरानी से अपने अब्बा को देखा। इकबाल ने मुस्कुराकर कहा, आओ हम दोनों चाय पीते हैं। उस एक पल में जैसे माहौल बदल गया। बाहर तूफान था और अंदर एक सुकून भरी खामोशी। नूर हल्का सा मुस्कुराई और अपने अब्बा के साथ बैठ गई। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उस कप के धुएं में घुल रही हों। सीन कट। रेहाना बेगम की नज़र पूरे घर में किसी को ढूंढ रही थी। आखिरकार उनकी नज़र सादिया पर जा टिकी। वो फरीद खान के साथ स्टडी में बैठी थी। अरे तुम यहाँ बैठी हो, रेहाना बेगम ने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सादिया ने उनकी तरफ देखा। आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? रेहाना बेगम ने भौहें चढ़ाई। तुम फैजान का कॉल इग्नोर कर रही हो। सादिया थोड़ी चौंकी। उसका फोन आया था, तुमसे बात करनी थी उसे। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे अब कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो। मुझे नूर की वकालत नहीं सन्नी, सादिया ने ठंडे लहजे में कहा। वो हमेशा उसी की तरफ से बोलेगा। रेहाना बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो तुम्हारे लिए ही तो परेशान हो रहा था बेटा। सादिया हल्का सा हंसी, मगर वो हंसी दर्द से भरी थी। वो सिर्फ दिखाता है कि मेरे लिए परेशान है। उसने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, असल में वो हमेशा पहले किसी और के लिए परेशान होता है। पहले माहिरा के लिए बोलता था और अब नूर के लिए बोलने लगा है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। तभी फरीद खान की भारी आवाज गूंजी, बेटा माहिरा और नूर का क्या मुकाबला? सादिया ने उनकी तरफ देखा। माहिरा उसकी बीवी थी, इसीलिए उसके हक में बोलना उसका फर्ज था। सादिया के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे ये बात अब उसके दिल तक पहुंचती ही नहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं कुछ खा लूं? मैंने कल से कुछ नहीं खाया। रेहाना बेगम हैरान रह गईं। मगर तुम तो रेहान के साथ डिनर पर गई थी, तुमने कुछ नहीं खाया वहां? सादिया की आंखों में एक ठंडी उदासी उतर आई। वहां कुछ खाने जैसा था ही नहीं। फिर उसने सीधा देखा। उसकी आवाज अब बिल्कुल सपाट थी। आपके बेटे के पास मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठने का वक्त नहीं है, तो वो मेरे साथ डिनर क्या करेगा? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, ना गुस्सा ना आंसू, बस एक ठंडा सा खालीपन।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भी याद रखें।